हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट दोस्त आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में आज मेरे साथ बैठी हैं कुछ दिग्गज हस्तियां और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। मुझे पता है जितनी भी लड़कियां जितनी भी लेडीज इस टॉपिक को सुनेंगी एक आवाज में कहेंगी वाकई हमें आजादी चाहिए। और जी हां, आज के टाइम में जहां हम आजादी की ऊंची पींगे भरते हैं, जहां हम बात करते हैं कि लड़कियां लड़कों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, जहां हम बात करते हैं कैसी सोसाइटी की जिसे हम कहते हैं आज के टाइम में कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी अब शायद खत्म हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां एक अजीब सी टीस है। जी हां, हर लड़की हर औरत के दिल में झांक कर देखिए, क्या वो अपने आप को सिक्योर्ड महसूस कर रही है, क्या वो अपने आप को फ्री महसूस कर रही है? शायद आज भी जवाब ना होगा। और इसी टॉपिक को आज हम उठाने वाले हैं और मेरे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में बैठी हैं मैडम संध्या बजाज, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने शायद नारी के अस्तित्व के लिए बहुत सारे काम किए हैं। मेरे साथ बैठी हैं मैडम रेनू भाटिया, जो कि खुद एक डिप्टी मेयर रही हैं और शायद आज भी। नारी को अगर संपूर्ण बनाना है या उसके स्वावलंबन की बात की जाए तो ये बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाती हैं। मेरे साथ बैठी हैं मैडम इकविंदर सिंह, जो कि प्रिंसिपल हैं मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 21C। मेरे साथ बैठी हैं मैडम सबिया इमरान, जो कि खुद एक विमेन एम्पावरमेंट का शो लेकर आती हैं रेडियो मानव रचना 107.8 पर। तो बताइए, जब ऐसे लोग मेरे साथ हों तो मुझे लगता है आज मैं बहुत ही धनी हूँ कि आज हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी आप सभी का रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में। सबसे पहला सवाल मैडम संध्या बजाज से। मैडम, हम बात करते हैं एक ऐसी सोसाइटी में जीने की जहां हम बिल्कुल आजाद हैं। शायद हमारे भारत को आजादी तो मिल गई, लेकिन एक नारी को क्या आपको लगता है आज भी आजादी मिली है?
जी नहीं, बिल्कुल आजादी नहीं मिली है। मैं कहना चाहूंगी जो दिल्ली का इंसिडेंट है उस हिसाब से तो मैं ये कहती हूँ कि ना केवल इंसानों से मेल से बल्कि बसों से भी डर लगने लगा है। आज इस तरीके की हमारी आजादी पे अंकुश है कि कोई बस देख के लगता था कि कभी एक्सीडेंट होएगा, और लेकिन आज इंसिडेंट होने लगे। आज उसे प्रयोग किया जाने लगा एक बस को इस विषय में कि वो किस तरह से एक लड़की का रेप होते हुए देख रही है। मैं तो हैरान हूँ इस बात पे कि ये आजादी की अगर ये मायने हैं तो ऐसी आजादी ना होने के बराबर है। और महिलाओं को जो आजादी चाहिए वो संपूर्ण आजादी ये चाहिए कि उन्हें कोई चीज का इस तरीके का डर नहीं हो। लेकिन हैरानी इस बात की है कि आज उन बदमाशों को कानून का डर नहीं है, जो दिखने में सिर्फ 5,000 या 6,000 के करीब होंगे पूरी दिल्ली के अंदर, लेकिन वो 1.5 करोड़ की आबादी के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, वो आधी आबादी पे भारी पड़ रहे हैं, वो महिलाओं पे भारी पड़ रहे हैं कि एक लड़की जो मेडिकल की स्टूडेंट है, जो आई है यहाँ पढ़ने और कितने लोगों की जान बचाने, आज अपनी जान के साथ में उसके खिलवाड़ हो रहा है। आज वो जान के लाले उसको पड़े हुए हैं। उस लड़की के ऊपर अगर आप सोचें तो मैं कहूंगी कि वो बच्ची आज हमारे देश की हमें बता रही है कि ये आजादी है, ये है महिलाओं की आजादी। इस तरीके की आजादी हमें आज मिली हुई है कि हमारी आधी आबादी पूरी तरह से जिसको कहते हैं पैरालिटिक हो रही है। और आज अगर कुछ महिलाएं, चंद महिलाएं अगर वो आजादी की सांस ले भी रही हैं तो वो भी सोच रही हैं, उन्हें भी महसूस हो रहा है, शर्म आ रही है उनको कि हम महिलाएं हैं लेकिन एक लड़की भरे बाजार में, भरे स्टेट में, एक ऐसी जगह पे जहाँ दिल्ली की उस बस में जो ये सब हुआ है, ये इतना घिनौना और घृणित कार्य है। इस तरीके से ये हुआ है, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि इसने एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है। और महिलाएं कहती हैं कि फीमेल पिटेसाइड कम हो, हमारी जो लड़कियां हैं वो उनकी संख्या कम होती जा रही है, तो कैसे नहीं कम होगी? ये बताइए कि लोग क्या सोचेंगे? बेटी पैदा होते ही सुरक्षा की जो भावना है वो उनमें कम हो जाती है। मैं भावना जी आपसे कहना चाहूंगी कि आज भावनाएं ही नहीं रही लोगों में, संवेदनाएं नहीं रही। वो लड़की जो बॉम्बे में एक गार्ड को हेल्प के लिए बुलाती है, उसके साथ में क्या होता है, उसको मौत से सामना करना पड़ता है, तो ये क्या बता रहा है? ये हमारा समाज संवेदनहीन हो चुका है। हमारे समाज में महिलाओं की कोई स्थिति नहीं रही, उनकी कोई दशा नहीं रही। जिन्होंने अपनी इज्जत को बचा के, अपने वर्चस्व को बचा के अपने ही बात रखी हुई है, आज हमारे देश की आप देखें तो वर्चुअल प्रधानमंत्री एक मैडम है, आप देखें तो हमारे आज राष्ट्रपति रही हैं अभी एक मैडम, अभी स्पीकर हमारी विमेन है। इतनी अधिक ऊंचे ओहदों पे महिलाओं के पहुंचने के बाद में महिला की ये इज्जत है और ये उसकी सुरक्षा है। तो मैं कहना चाहूंगी कि सच में आपने जो टॉपिक आज लिया है वो सही है कि आधी आबादी, लेकिन उसे चाहिए पूरी आजादी, लेकिन कोई आजादी नहीं है, बिल्कुल आजादी नहीं।
मैडम सभी आपसे जानना चाहूंगी कि जहां हम बात करते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हम बिल्कुल आजाद हैं, जो कोर्स आप करना चाहती हैं आप कर सकती हैं, आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहती हैं, आपके पास हर आजादी है, लेकिन घर से बाहर निकलते ही पहला कदम घर से बाहर और हम ये सोचने लग जाते हैं कि हम सिक्योर्ड कैसे हैं, तो क्या ये आजादी कहेंगे आप इसे?
असल में सिर्फ अंग्रेजों से ही हमें आज़ादी मिली है, लेकिन जो हमारी सोच है वो उसमें हमें पूरी तरह से आज़ादी नहीं मिल पाई है। जो हमारा तरीका होना चाहिए, जो हमारी सोच होनी चाहिए महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, अभी तक वो चीज़ पे हम पहुँच ही नहीं पाए हैं। अगर लड़कियां घर से बाहर जाती हैं तब आप देखिए बाहर का भी सिक्योरिटी उसके लिए नहीं है, कैसे वो आज़ादी महसूस करे? क्योंकि जो लोगों की मेंटालिटी है लड़की को लेके, एक महिला को लेके, वो उतनी सही नहीं है जितनी होनी चाहिए। अपने आप को नहीं वो सिक्योर महसूस करती है, उसको जो अगर कोई पहनावा पहनती है तो उसको सोचना पड़ता है कि मैं ये पहनावा पहन के बाहर जाऊंगी तो लोगों की गलत नज़रें मेरे ऊपर ना उठें। किसी भी पढ़ाई कोई करती है, अगर वक्त बेवक्त मान लीजिए वो इवनिंग की क्लासेस करना चाहती है, घर से बाहर निकलना चाहती है, तभी भी उसको सोचना पड़ेगा कि मैं इस वक्त घर से बाहर निकल रही हूँ, लौट कर आऊँगी तो क्या ये मेरे लिए सही है कि नहीं है। क्योंकि जो बेसिकली एक एटीट्यूड होना चाहिए, एक प्रवृत्ति होनी चाहिए पुरुषों की महिलाओं के प्रति, वो नहीं है।
मैडम रेडियो भाटी आपसे जानना चाहूंगी, जहां आप ऐसे लोगों के साथ काम करती हैं, ऐसी लेडीज के साथ काम करती हैं जिन्हें आप सेल्फ डिफेंस सिखाने की कोशिश कर रही हैं, आपको नहीं लगता है इसकी ज़रूरत इसीलिए आई क्योंकि महिलाओं के पास खुद की कोई आज़ादी नहीं है?
भावना, बहुत अच्छा टॉपिक है। सबसे पहले मैं उसके लिए थैंक्स करूंगी क्योंकि मैं एज अ प्रोड्यूसर भी दूरदर्शन में विमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स ही बनाती हूँ। और जो मैंने डिफेंस की आपने मुझे बात पूछी, ये बहुत पहले मैंने जजमेंट कर लिया था। जब हम छोटे थे तो आपको ध्यान हो संजय और गीता चोपड़ा कांड हुआ था
जी।
आज वही कांड रिपीट हुआ है
जी,
बिल्कुल सेम कांड रिपीट हुआ है। और इस तरह की जो दुराचार दुर्व्यवहार लड़कियों के साथ हो रहा है, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमें डिफेंस अपना सीखना बहुत जरूरी है। आज हम कोई हथियार साथ लेके नहीं घूम सकते, तलवार, चक्कू, गन, पिस्टल लेके हम नहीं घूम सकते। स्कूल गोइंग गर्ल्स ये सब चीज़ें अपने पास नहीं रख सकती, लेकिन सेल्फ डिफेंस के नाते वो अपने आप को प्रोटेक्ट कम से कम इतना कर सकती हैं कि अगर उनको कोई भीड़ में पकड़ लेता है, या इस तरह सुनसान जगह में, या ट्यूशन जाते समय, कोचिंग जाते समय, जॉब पे जाते समय इस तरह का उनके साथ अगर कोई व्यवहार होता है, एटलीस्ट अपने आप को इतना प्रोटेक्ट कर सकें कि उसको मार के भागने लायक अपनी सक्षमता बना सके वो। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि हर लड़की, 8th से लेकर मैंने एक मिशन जो स्टार्ट किया है, 8वीं से हर लड़की को सेल्फ डिफेंस सिखाना है। और आज मैंने लगभग 200 लड़कियों को फरीदाबाद में सिखाया है और मैं बहुत खुश हूँ, वो लड़कियाँ येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट पिछले दिनों में लेकर आई हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। और शायद ये एक ऐसा रास्ता हो सकता है
जी,
कुछ अपने आप को सेफ करने का
जी। मैडम इकविंदर सिंह आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि मैडम रेनू भाटिया ने कहा कि आज फरीदाबाद में 200 लड़कियां ऐसी हैं जो सेल्फ डिफेंस सीख चुकी हैं, बट आपको नहीं लगता कि समाज में इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या लड़कियों को आज ये सीखना है कि हम अपनी ही सुरक्षा अपने ही घर वाले, अपने ही घर के मर्द या अपनी ही सोसाइटी के लोगों से करें? क्या इसकी जरूरत आन पड़ी है आज?
देखिए, ये जो हमने हाल ही में रेणु जी ने बताया कि ये अभियान शुरू किया है उन्होंने बहुत पहले से, मैं इसकी बहुत बहुत बड़े पैमाने पे सराहना करती हूँ। और एज एन एजुकेशनिस्ट मैं आपको ये बता सकती हूँ कि सदियों से हमारी जो महिला हैं एजुकेशन के मामले में उनको छूट दी जा चुकी है, पर अपने अस्तित्व कहीं ना कहीं ढूंढने में, इन गेनिंग एजुकेशन, वो अपना अस्तित्व कहीं खो चुकी हैं। अब जब ना अपना अस्तित्व दोबारा से अपना ढूंढती हैं तो उनको कई दायरों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले वे फैमिली में आती हैं, और जब जो खासकर में देखा गया, मेजॉरिटी में देखा गया है कि जब अभी भी पढ़े लिखे लोग, क्योंकि घर में जब एक बिटिया पैदा होती है तो किसी किस्म का कुछ लगता है कि कहीं ना कहीं कोई लाइन छूट गई है उनसे
जी।
और ये पढ़े लिखों के परिवारों की मैं आपसे बात करती
हूँ,
और इसके पश्चात जब वे बड़ी होती है सो तुलना होती है, पेरेंट्स वगैरह तुलना करते हैं। एंड जो मैंने अपने करियर में ये देखा है कि जो पेरेंट्स जो होते हैं वो बॉयज़ के मामले में कुछ ज़्यादा ही करते हैं, इनको क्रिकेट सीखना है, इनको सेल्फ डिफेंस सीखना है, इनको ताइक्वांडो सीखना है, और जहाँ तक एक्टिविटीज़ गर्ल्स की आती है, इनको नीडल वर्क सिखा दीजिए, एंड कुकिंग विदाउट फायर सिखा दीजिए, और क्रिएटिव राइटिंग सिखा दीजिए। इसका मैं थोड़ा सा ओवरलैप करना चाहूँगी अपनी राइटिंग्स के माध्यम से, मैं ब्लॉग लिखती हूँ उसमें किसी तरह से मेरी जो एक पेन है थोड़ा पावरफुल बन जाता है, और उसी माध्यम से मैं लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहती हूँ कि देखिए जेंडर बायस जो हम करते हैं सदियों से चलता आ रहा है, जागरूकता की जरूरत है। कहीं ना कहीं किसी पैमाने पे स्टार्ट कीजिए, अगर निशाना सही नहीं आसपास तो लगेगा, लेकिन कोशिश तो कीजिए। और जिस तरह से आपने बताया है कि एक सेल्फ डिफेंस की जरूरत है, मुझे लगता है कि सिर्फ लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की जरूरत नहीं है, वाई नॉट बॉयज, बोथ, आई थिंक बोथ आर अनसेफ। लेकिन क्योंकि हम एक महिला ओरिएंटेड अपने आप को एक सोसाइटी बना दी है हमने, जो कि नहीं बननी चाहिए। वर्ल्ड ओवर है, यहाँ थोड़ी ज्यादा है क्योंकि इधर पे रह रहे देखते हैं, उनमें उस दायरे में पनप तो हम एक लड़की को देखते हैं, उसकी जरूरत मुझे लगता है कि जागरूकता बहुत जरूरी है बड़े पैमाने पे, अवेयरनेस जो है वो आए लोगों में, और जहाँ तक हमें आपको संभालने की जरूरत है हम संभली हुई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें रास्ता दिखाइए, अपने आप ढूंढ लेंगे, आगे मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जरूरत नहीं है सेल्फ डिफेंस की, अपनी सोच बदलिए हमारे बारे में, आगे पहुंच जाएंगे।
जी हाँ, आई थिंक अगर आज के टाइम में एक पुरुष ये समझ जाए कि महिला की क्या सोच है तो शायद हमारा समाज उभर जाएगा, लेकिन जरूरत है पुरुषों की सोच बदलने की, ना कि महिलाओं को ये सिखाने की कि तुम अपना बचाव कैसे कर सकती हो। बिल्कुल, आप लोगों की रिएक्शंस, आप लोगों के फीडबैक बिल्कुल वेलकम है, नंबर है वही 8010781078। मैं जानती हूँ ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके दिल में ढेर सारे सवाल उठ रहे होंगे, जल्दी से अपने मोबाइल फोन को उठाइए, हमें SMS करके बताइए 8010781078 पर। में आज हो रही है अस्तित्व की लड़ाई, यानी हम जानना चाह रहे हैं कि भाई इस पुरुष के समाज में कहाँ है वो अस्तित्व, कहाँ है वो फ्रीडम जो लड़कियों को मिलनी चाहिए, लेडीज को मिलनी चाहिए, और शायद 3 महीने की लड़की से लेकर 90 साल तक की औरत सेफ नहीं है। अगर बात की जाए पहनावे पे तो मुझे लगता है ना तो 90 साल की औरत को पहनावे को देखने की जरूरत है और ना ही 6 महीने या 6 साल की लड़की को, लेकिन ऐसी परेशानियों से हर कोई गुजर रहा है। और वहाँ बात आती है कि क्या आज भी हमारे अस्तित्व पर सवालिया निशान है कि क्या लड़कियों को इस दुनिया में होना चाहिए, क्या औरतों को इस दुनिया में होना चाहिए, और अगर औरतें दुनिया में नहीं होंगी तो ये पूरा समाज, ये पूरी सृष्टि कहाँ से पैदा होगी। हम जो लड़कियां होती हैं, हम जो औरतें होती हैं, हम बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, हम बहुत एक सॉफ्टर सेक्स कहलाती हैं, लेकिन अगर हम सॉफ्टर सेक्स हैं तो क्या हमें एक ऑब्जेक्ट समझ के कुचल दिया जाना या इस्तेमाल कर लिया जाना आपको लगता है सही है? क्या ये जस्टिफाइड है औरतों के साथ? मैडम
चाहूंगी कि मानव रचना में बैठ के ये बताऊंगी आपको कि ये प्रभु की बहुत खूबसूरत रचना है महिला के रूप में, उसने महिला को बहुत ही संजीदगी से बनाया, बड़ी फुर्सत से बनाया, ऐसा कहा जाता है उनके बारे में कि महिलाएं बड़ी फुर्सत से घड़ी जाती हैं, और उन्होंने उनमें बहुत सारे गुण डाले हैं, भावनाएं, और ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मैं सबसे अधिक ऋणी जो है वो महिला का हूँ, प्रथम तो उसे जीवन देने के लिए, लेकिन जीवन को जीने योग्य बनाने के लिए भी मैं महिला का ऋणी हूँ। तो जब महिला का ऋण मानते हैं हमारे ऋषि गुरु मुनि सब, और हम आज उस महिला को कुचलने में लगे हैं, जो सही मायने में प्रभु ने ही हमें कहा है कि तितली जैसी है, ये फूलों जैसी है, इसे कुचलना नहीं, इसकी इज्जत करना है, इसकी रेस्पेक्ट करना है पूरी। लेकिन आज जो महिला को स्थान दिया जा रहा है वो एक और ही किस्म का, या तो इतना अतिवादी किया जा रहा है कि उसे मॉडल बना के पेश किया जा रहा है, और या फिर इतनी अतिवादी किया जा रहा है कि उसे कुचला ही जा रहा है कि नहीं, पैदा होने से पहले मार दो, पैदा हो गई तब उसे मार दो, उसकी भावनाएं मार दो, उसे हर तरह से मृत्यु दी जा रही है, हर जगह पे ये उसे एहसास कराया जा रहा है कि तुम जितना आगे बढ़ने की कोशिश करोगे हम तुम्हें उतना पीछे धकेल देंगे, वो हमारे अंदर आर्ट है। तो इस तरीके की अगर जब बातें आती हैं तो विमेन यही सोचती है कि मैं इतना पढ़ लिख भी गई, बराबर में मैं पढ़ी हूँ अपने भाई के, बराबर में मैंने उस घर में जन्म लिया, लेकिन मैं कहाँ पे कमी रह गई मेरी, जो मुझे जो है वो मेरे माता पिता ने इस तरीके का वो नहीं दिया, वो वाली विरासत नहीं दी, वो बात नहीं दी। कानून बन चुके हैं आज महिला का, उसका हक है मकान में, घर में, जमीन जायदाद दौलत में, लेकिन इस तरीके की भावनाएं दी जाती हैं कि नहीं तुम बहन हो, तुम मत मांगना कुछ, सब कुछ भाई को दे देना। और इसके साथ साथ उन्हें ये बताया जाता है कि लड़की हमेशा त्याग करने के लिए पैदा हुई है, तुम त्याग करो, जितना कर सकते हो त्याग करो, लेकिन उसे कोई हक नहीं है, अधिकार हमारे छीने जा रहे हैं, अधिकार महिलाओं के कागजों पर हैं, कानूनों पर हैं, लेकिन इबारतों पर हैं, लेकिन सही मायने में वो क्रियान्वित नहीं किए जा रहे। ये बड़ा दुख होता है सोच के कि आपने जो मानव रचना करी थी हमारी कि हम एक मनुष्य हैं, वो मनुष्य मानने से भी इनकार है। अब आप देखिए इस केस में कि किस तरीके से रौंदा गया है, किस तरीके से पटका गया है, तो क्या माना किसी ने कि वो नाजुक है, वो एक महसूस कली है, माना किसी ने? नहीं माना। तो ऐसे वहशी लोगों के लिए कानून क्या कर सकेगा ये बताइए, कानून उनको कितनी सजा देगा, वहाँ बैठ के रोटी खिलाएगा 7 साल 14 साल? नहीं, ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए, ऐसे लोगों को इस तरीके का मिलना चाहिए कि मालूम हो कि, जैसा कि एक जस्टिस कामिनी लाओ ने अपने फैसले में कहा था कि ऐसे लोगों का वो अंग ही काट देना चाहिए जिससे वो लड़की के ऊपर अत्याचार कर सके, ऐसे लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, मैं यही कहना चाहूंगी कानून के मामले।
डॉक्टर सभी इमरान, आपसे जानना चाहूंगी कि लड़कियां बहुत ही खूबसूरत होती है, और जब कभी कोई ऐसा केस होता है जहां एक लड़की पर सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो ये कहा जाता है कि दे वर वेरी ब्यूटीफुल, दे वर वेरी अट्रैक्टिव, उन्होंने इस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि एक लड़का अट्रैक्ट हो गया, और ये सब उन लोगों के कमेंट हैं जो लोग शायद हमारे इस पूरे सृष्टि को चलाने की कहे या फिर हमारे पूरे सरकार को चलाने की बात की जाए। अगर बात की जाए एक चीफ मिनिस्टर की, तो उन्होंने कमेंट किया था कि लड़कियों की शादी जल्दी हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा उम्र तक उनकी शादी नहीं होती है तो देन दे आर ओपन टू सच थिंग्स। क्या आपको लगता है आज के समाज में जहाँ हम शायद ऊंची उड़ान भर रहे हैं, स्पेस तक हम पहुंच गए हैं, वहां ये कहा जाए कि 16-17 साल में उसकी शादी कर दी जाए, क्यों? क्योंकि वो एक अट्रैक्टिव सेक्स है या सॉफ्टर सेक्स है, क्या ये जस्टिफाइड है?
बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, बहुत गलत बात है ये। अगर हम लड़कियों की बात कहें, महिलाओं की बात कहें, तो कहते हैं ना कि कोमल तो जरूर है लेकिन कमजोर हरगिज नहीं, क्योंकि शक्ति का नाम ही दूसरा नारी होता है। नारी महिला एक कायनात की बहुत खूबसूरत एक देन है ऊपर वाले की, और उसको पूरा हक है कि वो भी पूरी तरह से खिले, पूरी तरह से महके। और ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी सोच को बदलें, उसको भी पूरा हक दें कि भाई वो भी जो करना चाहती है, जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है, अगर वो तितली है, खूबसूरत है, महक एक तरह से उसकी उड़ान है, तो उसको पूरा पूरा मौका दिया देना चाहिए कि वो अपनी उड़ान को पूरी कर सके। सोच बदलने की ज़रूरत है। ये गलत है कि हम ये सोचें कि उसको शादी जल्दी कर देनी चाहिए। अफसोस की बात है कि इतनी ज़्यादा तरक्की करने के बाद भी हमारी सोच यहीं पर ही आके रुक जाती है।
मैडम रेडू भाटी, आपसे जानना चाहूँगी कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो प्रूवन फैक्ट हैं कि जो महिलाएं हैं जिस किसी भी क्षेत्र में जाती हैं वो पुरुषों से आगे ही रहती हैं, या वो उनसे अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर्स बनकर दिखा रही हैं। फिर चाहे वो घर पर, चाहे रोटी बनाने की बात की जाए, खाना बनाने की बात की जाए, होम मेकर, एक अच्छी माँ बनने की बात की जाए, या फिर किसी ऑफिस की बात की जाए, बोर्ड रूम मीटिंग्स में आज हर जगह औरतें नजर आती हैं और वो बहुत अच्छी डिसीजन मेकर्स कही जाती हैं। येट अगेन जब हम उन मीटिंग से बाहर आते हैं, उस बोर्ड रूम से बाहर आते हैं, तो जैसे ही हम सड़क पर कदम रखते हैं हमें परेशानी हो जाती है कि क्या हम सिक्योर्ड हैं, क्या हम सेफ हैं। फिर चाहे हम अपने पुरुष साथी के साथ हों, पति के साथ हों, भाई के साथ हों, ये सवालिया निशान हम पर हमेशा रहता है कि क्या हम सेफ हैं। इन सब की प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं?
भावना मेंटल लेवल की बात है
जी।
जिसका जैसा मेंटल लेवल होगा वो वैसी बात करेगा। मैं एक सोशल वर्कर के नाते, हमारे पास संध्या दीदी बैठी हैं, हम लोगों के पास डिवोर्स के, ब्रेकेज के, इस तरह के बहुत से केसेस आते हैं, तो मैं आपको एक केस सुनाना चाहती हूँ
जी।
एक बहुत हाईली क्वालिफाइड लड़का, उसने एक लड़की से शादी की फैशन डिज़ाइनर से। ये मेरे पास केस आया है 5-6 महीने पहले। फैशन डिज़ाइनर लड़की थी, उसने किसी बिजनेस मीटिंग में उस फैशन डिज़ाइनर को देखा और अट्रैक्शन हुआ, दे गॉट फ्रेंडली एंड धीरे धीरे उन्होंने अपना रिलेशन शादी में तब्दील किया, प्रॉपर तरीके से, सामाजिक तौर पर धूमधाम से शादी, एवरीथिंग। 7-8 months के बाद उस लड़की के साथ प्रॉब्लम्स हुई
जी।
तो पता नहीं किसने मेरा बताया, दे केम टू मी। लड़की को मैंने अकेले में पूछा तेरे साथ पर्सनल क्या प्रॉब्लम्स
जी।
तो लड़की ने मुझे बोला कि देखो दीदी, हमारे अट्रैक्शन हमारे जॉब्स की वजह से हुई थी। ही वॉज अ बिजनेस मैन, आई गॉट अट्रैक्टेड टू हिम एंड आई वॉज अ फैशन डिजाइनर। वेन आई एम अ फैशन डिजाइनर आई हैव टू वेयर एवरीथिंग, बिकॉज वेन आई गिव अ फैशन डिजाइन मुझे अपने ऊपर दिखाना है कि देखो ये ड्रेसिंग मैं करती हूँ। डजेंट इट मीन कि आई एम एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ दैट कम वट एवर डर्टी थाट एनी बडी थिंक्स
जी।
लेकिन उस लड़के ने इतना एजुकेटेड सोच के मैंने उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाया कि आई एम अ डिज़ाइनर, मे बी मैं आगे अपना बिजनेस प्रोजेक्ट करूँगी, ही इज़ अ बिजनेस मैन लाइक दैट। लेकिन आज मैं अगर डीप नेक्स पहनती हूँ
जी,
आज मैं अगर स्लिट स्कर्ट पहनती हूँ, आज मैं अगर टाइट्स पहनती हूँ, तो वो लड़का मेरा हस्बैंड, जो अब उसका हस्बैंड हो गया, वो कहती है, अब वो लड़का मुझे कहता है तू किसको दिखाने के लिए पहन रही है, तूने जो दिखाना था मैंने देख लिया, तूने जो करना था मैंने कर लिया, अब किसको दिखाती है। तो कहती है मैं जब उसने पहली बार मुझे ऐसे बोला, आई वाज शॉक्ड कि दिस इज दैट एजुकेटेड मैन। फिर एक बार कहती है कि हम एक मेरा कंपनी का शो था फैशन डिजाइन का, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ गई, अब शी वाजंट पार्टिसिपेटिंग बट शी वेंट एज अ गेस्ट। तो कहती है मैं अपने हस्बैंड को साथ गई और जो वहाँ की ऑर्गेनाइजर, शी वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड शी वाज वेयरिंग अ बिल्कुल टाई नॉट डीप नेक। तो कहती है माय हस्बैंड वाज द फर्स्ट पर्सन टू लुक एंड स्टेयर एट हर
जी।
तब मैंने बोला क्या देख रहे हो आप वहाँ पे। तो कहती है इस बात पे उसने घर आके मुझे इतना जलील किया, इतना रोंदा कि 4 दिन तक मैं रोती रही, बट वी हम हस्बैंड वाइफ हैं तो देयर वाज नथिंग। इस तरह के उसने मुझे 3-4 ऐसे किस्से सुनाए जो जिस बातों से वो आपस में अट्रैक्ट हुए थे
वही बातें
अब अपनी वाइफ पर वो आजमा रहा है, और बट अपना आई जेस्चर नहीं चेंज कर रहा, अपनी मेंटालिटी नहीं चेंज कर रहा। अगर डीप नेक पहनना इज डर्टी, यू टेलिंग योर वाइफ नॉट टू वेयर, व्हाई इज योर डर्टी आई लुकिंग देयर?
एग्जैक्टली।
सो मैं इस तरह के लड़कों को हेट करती हूँ
जी,
मैं इस तरह के आदमियों के खिलाफ हूँ
जी।
खुद जैसे कहते हैं ना, जो चीज तुम्हें अपने लिए सुनना पसंद है, जो चीज तुम्हें अपने लिए देखना पसंद है वो दूसरे की देखो
जी।
और अगर तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं है और फिर दूसरे को टोंट मारना, आई थिंक सो दैट इज मेंटल डर्टी स्टेटस। चाहे तुम कितना भी पैसे वाले हो, चाहे तुम कितना एजुकेटेड हो, चाहे तुम कितना अच्छा स्टाइल मार लो, कुछ कर लो, आई थिंक दीज काइंड ऑफ मेन आर वर्स। सो मेरा पहला जो एक रिक्वेस्ट है मर्दों को, पुरुषों को, अपनी मेंटालिटी को अच्छा बनाएं। आपने अभी बात की कि औरत कुछ भी पहन ले, 3 महीने की बच्ची या 80 साल की, आप पिछले दिनों के रिकॉर्ड्स निकालें अखबारों के, बेटियों के साथ रेप की
जी,
वहाँ कौन सी ड्रेसिंग सेंस है, वहाँ कौन सा एक्सप्लोजर है।
तो एक दादा अपनी पोती के
साथ, बेटियों के साथ तो मतलब गंज के भगवान का रूप ऐसा सोच के हम उनको बड़ा करते हैं और उन्हीं के साथ हम रेप कर देते हैं, तो वो पुरुष और वो दूसरा पुरुष क्या फर्क हो गए
जी।
लेकिन अगर कभी आप, आज आपने हम 4 महिलाओं का इंटरव्यू लिया है ना, कल 4 पुरुषों का लीजिए
जी,
और उन पुरुषों से पूछिए, वो कभी एक दूसरे को बुरा नहीं कहेंगे, पर्दा डालेंगे, आप मेरा ये बेट है आपसे, आप ऐसा कीजिए। तो मेंटल स्टेटस चेंज करने की जरूरत है, नॉट पहनावा, नॉट नथिंग।
मैडम एकविंदर, आपसे जानना चाहूंगी कि इस समाज में जितने भी पुरुष हैं, इन सबकी परवरिश एक औरत ने ही की है, लेकिन फिर भी उनकी सोच बहुत अजीब है और वो भी औरतों के खिलाफ। क्या लगता है आपको, यू हैव बीन एडुकेटिंग पीपल, इतने सारे बच्चों को आपने एजुकेट किया है, फिर भी आपको लगता है कि हमारे समाज की सोच नहीं बदली? इतने साल हो गए, हम इतनी, आज हम 22वीं सदी में कदम रखने वाले हैं, लेकिन फिर भी परेशानी वही है, सोच नहीं बदली, इसका क्या कारण है?
देखिए, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा रखा है, उसके एक काउंटर में आपको एक क्वेश्चन में देती
जी,
कि क्योंकि हमको एक सॉफ्टवेयर सेक्स माना जाता है
जी,
तो ये क्वेश्चन मैं सभी पुरुषों से करना चाहती हूँ कि क्या हम सॉफ्ट टारगेट्स भी हैं? इफ वी आर सॉफ्टवेयर सेक्स, आर वी ऑल्सो सॉफ्ट टारगेट्स फॉर यू? और जैसे रेणु जी ने, संध्या जी ने बिल्कुल सही कहा है, जब से चाइल्ड मैरिज का आपने बताया है कि लड़की बहुत सेफ हो जाएगी, आप उनकी शादी कर दीजिए, लेकिन अगर आप पुराने अपने स्टैटिस्टिक्स देखें, एक महिला आफ्टर मैरिज भी रेप होती है, और ये मुद्दा बहुत महिलाओं ने उठाया है आपके कोर्ट में, आपके ऑफिस में, कि मुझे जो मेरा अधिकार है मेंटल एंड फिजिकल, क्या वो अलाउड है एक्सरसाइज करना? सो इस, ये जो है हमारी सोच, ये हमें मर्दों तक कहीं किसी हद तक कुछ पहुँचानी है। अगेन, बड़े अफसोस की बात ये है कि हमारे जो सोसाइटी है, पढ़े लिखे होने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद भी उनका जो ओवर द इयर्स नहीं बदला है, क्योंकि यही कहा जाता है कि यू आर सम वॉट अंडर अस। एक फैमिली में अगर क्वालिफिकेशन के देखा जाए, तो मुझे लगता है कि आजकल जिस तरह से मांग की जाती है, या मांग तो कह नहीं, जिस तरह से गर्ल्स की शादी के बारे में बात होती है, उनको एक ढला ढलाया ढांचे में एक मॉडल चाहिए
जी।
मल्टीफैसेटेड हो, काम करने वाली महिला हो, पैसा लेके आए, बच्चा भी पाले, और पूरी पूर्ण तरह से एक कंप्लीट वुमन चाहिए। क्या हम वही चीज़ें आज की एक लड़की जो शादी के लायक है, अपने पेरेंट्स को कह सकती है, अपने माता पिता को कह सकती है कि मुझे ऐसा ही सांचे में ढला ढलाया पुरुष चाहिए
जी?
हमें बोलने का वो अधिकार नहीं है। 70 से लेकर के जब से हमारे गैंग रेप हो रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है, महिला अमेंडमेंट हो चुकी है, एविडेंस आ चुके हैं, एक्ट्स आ चुके हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो चुके हैं, लेकिन ओवर द इयर्स जो मेंटालिटी है वो हम अभी तक नहीं बदल पाए हैं। इसकी ये सोच बदलने की हमको बहुत ज़रूरत है, और दायरे पे दायरा अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको कह सकती हूँ कि हमको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो लगेगी, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि हम महिला हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सॉफ्ट टारगेट तो जिसने सोचना सोचते नहीं, मेंटालिटी जो जिसकी है बदल सकते हैं
जी।
अगर नहीं भी बदलेगी तो कोई बात नहीं, हम हैं जहाँ पर हैं, वी हैव टू टेल द पुरुष, वी हैव टू टेल द मैन कि यस वी हैव अराइव्ड
जी। ये शायद सदियों से औरतें करती आ रही हैं और करती रहेंगी, लेकिन फिर भी क्वेश्चन वही आ जाता है कि ये पुरुषों की सोच क्यों है। अगर आपके पास जवाब है जरूर मुझे बताइएगा, 8010781078 वो नंबर है जहाँ पर मैं चाहूंगी कि हर पुरुष अगर ये सोचता है कि उनकी सोच बदली हुई है तो जरूर मुझे SMS करें। और अगर आप उन पुरुषों में से हैं जिनकी सोच आज भी नहीं बदली है, जो आज भी लड़कियों को कमोडिटी समझते हैं, आइटम समझते हैं, मॉडल समझते हैं, चलता हुआ पीस समझते हैं, तो शायद आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। SMS जरूर करिएगा 8010781078 पर। हम बात कर रहे हैं आज के टाइम में भी हमारे अस्तित्व की लड़ाई के बारे में, हम बात कर रहे हैं कि लेडीज को फ्रीडम क्यों नहीं है, आज भी क्यों हर चीज से पहले, हर डिसीजन से पहले ये कहा जाता है कि एक सजेशन ले लिया जाए किसी पुरुष से, क्यों हर चीज से पहले एक जो क्वेश्चन आता है एडवाइस का, वो हमेशा एक पुरुष ही क्यों, एक महिला क्यों नहीं। कभी एक लड़की को ये नहीं कहा जाता है कि अगर वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन यानी शादी के बारे में बात कर रही है तो ये नहीं कहा जाता है कि जाइए अपनी माँ से पूछिए, कहा जाता है अपने पिता से पूछिए, अपने भाई से पूछिए। क्यों ये आज भी हक नहीं है, क्यों ये फ्रीडम आज भी एक नारी को नहीं है, जबकि अच्छे से अच्छा डिसीजन, सबसे स्थिर दिमाग से लिया हुआ डिसीजन हमेशा एक नारी का ही होता है। मैडम संध्या बजाज, आपसे जानना चाहूंगी, बहुत सारे ऐसे आपने तो केस देखे होंगे और जिस जगह आपने ये देखा होगा कि डिफिकल्ट कंडीशंस को भी औरत ने बहुत अच्छे से संभाला है, आदमी ने बहुत बिगाड़ने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी उसे क्यों नहीं डिसीजन मेकर माना जाता है आज भी हमारी सोसाइटी में।
बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं शादी के विषय में तो ये कहना चाहूंगी कि माँ तो वो है जो बेटी का इतना अधिक भविष्य अपनी पता नहीं कौन सी आंखों से, एक्सट्रेड आईज है उसके पास में, वो देख लेती है कौन सा लड़का उसके लिए सही है और कौन से लड़के के लिए बहू कौन सी आनी चाहिए इसे भी देख लेती है। ये माँ का दिल कह जाता, उसकी आत्मा कह जाती, क्योंकि उसने उसी गर्भ में उस बच्चे को रखा होता है, उस बच्ची को रखा होता है, तो अपनी बच्ची को ज्यादा अच्छी तरह से जानती है। लेकिन अफसोस की बात है कि सब चीज में पिता या भाई ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं, माँ से तो बाद में फॉर्मेलिटी की जाती है कि हमने ये लड़का
आकर बताया जाता है कि फलां लड़का देख लिया गया है और कल आपकी या परसों आपकी या इस दिन आपकी बेटी की शादी इससे होने वाली है।
ये कहा जाता है कि वो लोग आने वाले हैं, आप सिर्फ तैयारी करिए कि चाय पानी खाना क्या क्या चीजें होंगी जो हम उनकी आवाभगत में पेश कर सके, इन चीजों को कहा जाता है। ये नहीं कहा जाता कि आप हमें देख के अपना डिसीजन बताना, ये बात नहीं कही जाती। जबकि माइंड जो है वो डिसीजन मेकिंग का, वो प्रभु ने उसे, भगवान ने बहुत ही अच्छा दिया है। मैं कहना चाहूंगी कि अगर हम, जैसे मैं एक एडवोकेट हूँ और मेरे पति भी वकील हैं, और अगर हम दोनों आते हैं तो एक माइंड सेट है, जैसा कि अभी एकविंदर जी ने बोला, रेणु जी ने बोला, मैडम ने बोला कि देखिए एक माइंड सेट है हमारी सोसाइटी का, हम दोनों लॉयर हैं, दोनों थक के आए हैं, दोनों कोर्ट से आए हैं, लेकिन एक माइंड सेट है कि मैं ही पूछूंगी चाय पियेंगे क्या आप।
बिल्कुल,
कभी नहीं ऐसा होएगा कि मेरा पति मुझसे पूछेगा कि आप चाय पियेंगी, संध्या जी मैं चाय बनाऊं आपके लिए, ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि आप पीना चाहती है, देखना चाहती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी सोसाइटी का माइंड सेट है कि नहीं, हमें महिला से पूछना ही नहीं, माँ से पूछना नहीं, जिसने जन्म दिया है, पल पल जिसके साथ रहती है बच्ची, नहीं उससे नहीं पूछना, हमने पूछना है पिता से कि वो काम क्या करता है और पिता क्या देखेगा, उसके पास पैसा कितना है, उसका रोब कितना है, उस सोसाइटी में उसका नाम कितना है, वो ये नहीं देखेगा वो मेरी बच्ची को सुखी कितना रखेगा। अगर सुखी रखने की बात है, उसके हक अधिकार देने की बात है, वो अधिकार माँ पहचान जाती है कि ये मेरी बच्ची को कितने अधिकार दे देने वाला है, ये माँ में होती है निर्णायक भूमिका, लेकिन नहीं उसको मिलती है। तो ये तो हमारी सोसाइटी में एक सेट सिस्टम बन चुका है, उसे बहुत जल्दी से तोड़ना है हम लोगों को, हम महिलाओं को आगे आना है। मैं हमेशा अपने उसमें कहती हूँ कि 8-8 साल लव अफेयर चलता है लड़का लड़की का, 8 दिन तक रिश्ता नहीं चलता। अभी रेणु जी कह रही थी, मेरे पास केस आया, मेरे पास हजारों केस ऐसे आ रहे हैं आज डाइवोर्स के, कि आज अगर आप काम देख लें कोर्ट्स में, तो कोर्ट में 30% तक काम जो है वो सिर्फ डाइवोर्स केसेस में चला आया, वो भी म्यूचुअल। इतनी जल्दी, जितनी जल्दी वो राजी होते हैं शादी करने को, उतनी जल्दी म्यूचुअल डाइवोर्स लेने को राजी है कि नहीं हमारा, हमें अलग करा दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए इनसे, हमें सिर्फ अलग करा दीजिए। तो अगर हमारी सोसाइटी में ये रहा तो हम पश्चिमी सभ्यता को, पश्चिमी सोसाइटी को बहुत पीछे छोड़ जाएंगे। हमारे यहाँ बर्गर आया, पिज्जा आया, सब कुछ आया, हमने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आज हमारे रिश्तों में दरारें आए जो पश्चिमी सभ्यता में हैं, वो नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे।
मैडम सभी इमरान, आपसे जानना चाहूंगी कि हम बात कर रहे हैं एक ऐसे डिसीजन की जो एक लड़की या एक लड़के की जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन होता है, लेकिन फिर भी आज सोसाइटी में औरतें डिसीजन मेकर्स नहीं है, क्या कारण आपको लगता है?
मैन ईगो प्रॉब्लम, एक लफ्ज में अगर मैं कहना चाहूँ, क्योंकि आदमी ने ये तो एक्सेप्ट कर लिया समाज में, सोसाइटी को देख के, कि हाँ उसे लड़कियों को पढ़ना चाहिए, हमारे घर में जो बहू आ रही है वो पढ़ी लिखी आनी चाहिए, लेकिन जो असल ईगो प्रॉब्लम होती है अंदर से एक्सेप्ट नहीं हो पाता, बराबरी का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं
जी।
अब देखिए अगर पति पत्नी दोनों जॉब पे अगर जाते हैं तो बीवी ही है जो सुबह उठेगी, खाना बनाएगी, अपना भी लंच बनाएगी, अपने पति का भी बनाएगी, बच्चों का भी बना के रखे जाएगी, दिन भर थकी हारे दोनों घर लौट कर आ रहे हैं, जैसे मैडम ने बोला पति भी आया है, पत्नी भी, दोनों वो भी थक हार के आई है, लेकिन चाय बीवी ही बनाएगी
जी।
और कोई भी अगर डिसीजन लेना है कि भाई अगर खाने में क्या बनना है, वो पति बताएगा कि हाँ तुम ये बनाओ और बनाएगी बीवी
जी।
तो कहीं ना कहीं, या ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, या कोई भी अगर मेजर डिसीजन लेना हो तो कॉन्फिडेंस नहीं आता बीवी के ऊपर कि हाँ वो सही डिसीजन लेगी। तो एक यही वजह है कि वो ईगो में कहीं ना कहीं ये चीज़ हर्ट होती है कि हम उसको बराबरी का दर्जा नहीं दे पा रहे
जी।
यही एक बात है जो हम डिस्कशन कर रहे हैं और किसी ना किसी तरह से हमें यही मैसेज कन्वे करना है कि इस सोच को बदलना है
जी,
कि आप बराबरी का दर्जा सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, उसको सोचने में, उसको डिसीजन देने में आपको देना पड़ेगा।
मैडम रेनू भाटी, आपसे जानना चाहूंगी, एक छोटा सा किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक लड़की है, एक लेडी है राधा रायशुड से, जो कि एक कंपनी की सीईओ है जो पूरी कंपनी को चलाती है। लेकिन उसके हस्बैंड ने जब पहली बार प्रॉपर्टी खरीदी तो उसको ये कह के छोड़ दिया कि अरे इससे पूछने की क्या जरूरत है, प्रॉपर्टी के बारे में इसको क्या पता। यानी वो घर उन दोनों के लिए खरीदा जाना था लेकिन उसकी सलाह नहीं ली गई, रादर उसके ससुर की सलाह ली गई। तो आप मुझे बताइए, जहां एक वो लेडी है जो पूरी कंपनी को चला सकती है, करोड़ों के टर्नओवर का डिसीजन वो लेती है, लेकिन अगर इस 25, 30, 50 लाख की एक प्रॉपर्टी खरीदी जानी है तो उसके डिसीजन में ये कहा जा रहा है, तुम औरतें क्या डिसीजन लेंगी प्रॉपर्टी के बारे में, तुम औरतें क्या मैट्रिमोनियल चीजों के बारे में जानती हैं, किसी लड़के को तुम क्या पहचान पाते हो। क्या आपको लगता है आज भी लड़की को सिर्फ ये या एक औरत को यही समझा जाता है कि ये सिर्फ ये डिसाइड कर सकती है कि रात में क्या खाना बनेगा, सुबह क्या खाना बनेगा, या उनके घर में वो क्या पहनेंगे? क्या बड़े बड़े डिसीजंस लेने का अधिकार हम लोगों को आज भी नहीं मिला है?
भावना, मैं सभ्या जी की बात से सहमत हूँ। इसका शॉर्ट आंसर तो ईगो ही है
जी।
आप ये देखिए कि हस्बैंड वाइफ सेम पोस्ट पे हैं, जैसे अभी दो मिनट पहले संध्या दीदी ने अपना बताया
जी,
सभ्या जी ने चर्चा की। लेकिन कभी अगर वाइफ को जरूरत पड़े ना कि मुझे भावना से कोई काम निकलवाना है, तो आप प्लीज बोल देंगे भावना को, हस्बैंड तब उस बात को तड़ी समझेगा
जी।
लेकिन अगर हस्बैंड को भावना से काम निकलवाना है
जी, जी,
और
जी,
वाइफ भावना को जानती है तो वो कभी नहीं बोलेगा वो कहेगा कि मैं अपना काम खुद कर लूंगा, भावना के पास अपनी वाइफ के थ्रू क्यों जाऊं, क्या मैं वाइफ का पिछला हूँ, क्या मैं वाइफ का ये हूँ, क्या वो हूँ। तो जब ऐसी बातें आती है ना हस्बैंड वाइफ में या किसी कपल में, यहाँ ईगो क्लैश करता है। और वाइफ इन बातों को कभी ईगो नहीं लेती, वाइफ इन बातों को फर्ज, प्यार, पति का एक लाड, दैट काइंड ऑफ स्टेटस लेती है इंडियन वाइफ
जी।
और हस्बैंड हमेशा लेते हैं ईगो
जी।
यहाँ क्लैश आता है। मैं जो आपको एक वापस जाऊंगी सेल्फ डिफेंस पे बात में, जो मैं आपको ये बात कर रही थी ना, ये मैं इसी ईगो क्लैश को खत्म करने के लिए, क्योंकि बचपन से खत्म होगी ना तो शायद बड़े होने तक नहीं आएगी। आप देखिए, मैं और आप संध्या दीदी, मैं अकविंदर, हम जिस उम्र के हैं
जी,
आप तो हमसे बहुत छोटी होंगी, लेकिन हम जिस उम्र के हैं, हमें याद है बाजार अदरक लेने भी जाना तो मम्मी कहती थी मुन्ने को साथ ले जा, तो उंगली पकड़ के मुन्ने को हम साथ ले जा रहे हैं। 5 ईयर्स का मेरा छोटा मुन्ना भाई, वो मेरी क्या रक्षा करेगा
जी,
है ना, पप्पू को साथ ले जा, गुड्डू को साथ ले जा, ऐसा। वाई ये चीज खत्म करने के लिए मैं चाहती हूँ सब लड़कियां, सब लड़के डिफेंस सीखें
जी,
ताकि ये बड़े होकर ईगो भी ना बने, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी बने और सेल्फ डिफेंस भी बने। मेरा एक छोटा सा जो सब्जेक्ट है ना सेल्फ डिफेंस पे, वो 3 चीजों को जोड़ता है। सेल्फ डिफेंस फिजिकली बाय जूडो, कराटे एंड मार्शल आर्ट्स। सेल्फ डिफेंस मेंटली बाय टीचिंग ऑल दी गर्ल्स कि मेंटली अपने आप को डिफेंस कैसे करना है इन सब बातों से। एंड सेल्फ डिफेंस फाइनेंशियली, हाउ शुड यू बी सिक्योर, 10 रुपए दे दे, 50 रुपए दे दे, 20 रुपए दे दे, ये पति को ना बोलना पड़े, पापा को ना बोलना पड़े एक सर्टन स्टेज के बाद
जी।
तो ये सारी चीजों का जब हम डिफेंस कर लेंगे ना, मेरे को ऐसे लगता है, आई डोंट नो, मेरी स्टडी ऐसी कहती है कि शायद ये सारा कंट्रोल, बड़े होकर ईगो क्लैश, ये जो एक अलग पना आता है लड़के लड़की में और ये जो एक जिद आती है, ये शायद खत्म हो जाए। आई एम ट्राइंग टू डू ऑल दैट
जी। हाँ, मैं आपकी इस बात को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि बाई नेचर अगर कहते हैं कि महिलाएं कमजोर होती हैं, फिजिकली वीक होती हैं, तो अगर सेल्फ डिफेंस एक उनका एडिटिव एक चीज़ हो जाएगी, उनकी क्वालिटी, जो उसको हेल्प करेगा। जो ईगो की बात अभी चल रही थी, तो एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सा किस्सा, जो कि मेरा अपना ही है, मुझे याद आया, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जिस वक्त मेरी शुरू में शादी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड का एक्चुअली हिंदी थोड़ा कमज़ोर है और इंग्लिश उनको हैदराबाद से वो पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे गांव में कोई पेपर आया जो पढ़ाना था उनको, तो उस वक्त मुझसे उन्होंने पढ़वाया, तो जो लोग साहब आए थे वो कहने लगे कि लगता है कि इमरान की बीवी तो इमरान से ज़्यादा पढ़ी लिखी लगती है। तो वो मेरे हस्बैंड को इतना हर्ट हुआ कि उस बार उन्होंने कहा जो भी अगर कोई चीज़ आता डॉक्यूमेंट होता था हिंदी का जो उनको समझना नहीं आता था, तो वो कमरे में मुझे बुलाते थे, वहाँ पूछते थे, उसके बाद फिर वो जाते थे। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल।
यस,
पढ़े लिखे लोग का ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो कम पढ़ा लिखा तबका है उसके अंदर ही जो ये प्रॉब्लम होती है, ये अच्छे पढ़े लिखे लोगों में भी वो प्रॉब्लम होती है।
बिल्कुल है।
बट देन आई स्टिल हैव अ क्वेश्चन मैडम एकविंदर सिंह, आपसे जानना चाहूंगी कि आई ऑलवेज बिलीव वन थिंग, जितने भी लड़के हमारे साथ पढ़े हैं, क्या उन्हें सेम पढ़ाई नहीं सिखाई गई है? क्या वो उन्हीं स्कूल्स में नहीं पढ़े गए हैं? उन्हीं टीचरों ने उन्हें सिखाया है, लेकिन उनका माइंड फ्रेम बिल्कुल अलग है। दे डू नॉट वॉन्ट टू एक्सेप्ट दैट येस वेमेन कुड बी बेटर।
देखिए, ये सबसे पहले मैं आपको एक जो घर का दायरा है जहाँ पर एक बच्ची पैदा होती है, एक बच्चा पैदा होता है,
जी,
मैं शुरुआत वहाँ से करना चाहती हूँ। पहला स्कूल जो हमारा है वही है जहाँ हम अपने आँखें खोलते हैं,
जी।
तो पेरेंट्स का जो सबसे पहला योगदान है, जब बच्चा फोकस करता है अपनी आँखें, तो उसी से लिसनिंग, जो हमारी प्राइमरी स्किल्स होती हैं, हमारी लिसनिंग एंड स्पीकिंग वहीं से शुरू होती है। रीडिंग राइटिंग तो बहुत लेट आता है हमारा, लेकिन जो पहली हमारी दो स्किल जो डेवलप होती हैं, वो हमारा स्कूल जो है, हमारा अपना घर है, वहाँ से हम पास ऑन होते हैं आगे। बच्चा भी आया, एक लड़का भी आया, लड़की भी आई, दोनों को एज अ टीचर इकट्ठा देखा, हर एक का अपना नापतोल लिया, पेरेंट्स आते हैं मिलने के लिए, फाइन, नो प्रॉब्लम, पीटीएम्स होती हैं, हमारी इंटरेक्शन होते हैं। लेकिन प्राइमरी से हमारे तीन फेजेस होते हैं, प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी ऑन टू द सीनियर सेकेंडरी। जब बात सीनियर सेकेंडरी से प्राइमरी से जो आती है, बच्चा फिजिकली प्यूबर्टी में आता है, मेंटली डिफरेंट माइंडसेट होता है, उस समय एक ट्रांजिशन आता है जब हम बच्ची को बताते हैं कि ये आपका। लेकिन ये वर्कशॉप्स हमारी जो होती हैं, बच्चियों के लिए थोड़ी ज़्यादा होती हैं और बॉयज़ के लिए थोड़ी कम होती हैं। हम सिर्फ बच्चियों को क्यों बताते हैं कि गुड टच एंड बैड टच ये होता है, बॉयज़ को क्यों नहीं बताते हैं? नंबर वन, लैक ऑफ एजुकेशन, क्योंकि घर से हमको यही बताया जाता है कि बेटा आप बाप बड़े हो रहे हो, आप इस तरह से पहनना शुरू करो, और बॉयज जो पहनते आ रहे हैं वो तो पहनते रहेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देन वी कम ऑन टू सेकेंडरी लेवल, जो कि बहुत ही एक हमारी वल्नरेबल एज होती है, द टाइम व्हेन 14 टू 16 बहुत ही एक नाजुक टाइम आता है। उस समय अगेन दे आर लुकिंग एट ईच अदर, एक दूसरे की डेवलपमेंट देख रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, और घर से यही बताया जाता है कि हम लोग जितना भी सेंसिटाइज कर दें, एक जनरेशन एक्चुअली लगेगी ये सब देखने में। उसको यही बताया जाता है कि नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू गो इनटू योर स्ट्रीम ऑफ चूजिंग योर सब्जेक्ट्स। गर्ल यू विल डू दिस इवेंचुअली, आपने तो शादी करनी। बॉयज ये बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ठीक है, लेकिन जैसे आपने तितली बोला उड़ान, ये इसमें मैं फिट करना चाहती हूँ, ये आपका ये उड़ान। उस समय हमने देखनी है कि हम किसको कितनी उड़ान भरने का मौका देते हैं। तो जब उस समय हमने पेरेंट्स को बता दिया, इसलिए एक हमारा एक ट्राई सर्कल सा बन जाता है, जैसे हम ट्रायंगल कहते हैं, जैसे भी कह लीजिए, फोकल पॉइंट पर हमारा बच्चा है, उसको हमने सेंसिटाइज करना है पेरेंट्स के साथ कि बच्चे को इतनी आप फ्रीडम दीजिए, बच्चियों को खासकर, कि अपनी उड़ान भर सके, इतना उनमें आत्मबल शक्ति दीजिए कि वो अपनी सोच आगे के लिए क्या बना है दे दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक गुड अमाउंट ऑफ फेथ जो आपको अपने बेटे के लिए है, उतना ही फेथ अपनी बच्ची पे कीजिए कि यदि वो अकेली किसी पानी में उतरती है, उसको तैरना आ सकता है, आप सिखाएं तो सही।
जरूरत यह है कि मुझे लगता है आजकल न सिर्फ पुरुषों को ये सेंसिटाइज करने की जरूरत है, पुरुषों को ये सिखाने की जरूरत है वो सोच बदली जाए, शायद औरतों को भी अपनी सोच बदलनी है। एंड इफ वी हैव फेथ इन विमेन, आई थिंक एक औरत को अगर एक औरत पर भरोसा होगा तो वी कैन एक्चुअली गो अ लॉन्ग वे। फिलहाल मैडम संध्या बजाज से जाना चाहूंगी, इतने सारे केसेस आपने देखे हैं, लेकिन फिर भी सवाल वही उठता है कि ये जो अस्तित्व की लड़ाई है एक औरत की, ये कब तक जारी रहेगी? क्या आपको लगता है इसका कोई अंत आने वाला है?
देखिए, दो लाइनें हैं, अभी अरविंदर कह रही थी कि उड़ान हमें पूरी भरने देनी चाहिए, तो है कि एक परिंदा आसमान की उड़ान पर है और तीर कई हाथों में कई शख्स के कमान पर
है। बहुत खूबसूरत,
कितने ही लोग हैं जो तीर लिए खड़े हुए हैं कि ये परिंदा उड़े और हम तीर चलाएं और वो नीचे आए, और सब नीचे लाने की कोशिशें हो रही हैं, ऊपर आगे लाने की कोशिशें नहीं की जा रही हैं। इसीलिए जब आप ये सोचते हैं, हम लोग बैठे हैं, रेणु जी बैठी हैं, सादिया जी बैठी हैं, उन्होंने बताया जिस तरीके से, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि हमने अपनी दुनिया बनाई है। मैं ये कहना चाहूँगी कि हर महिला अपनी दुनिया बना सकती है। मैं उन बहनों को, बेटियों को संदेश देना चाहूँगी, आपके मानव रचना जो आपका रेडियो है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं उनको संदेश देना चाहूँगी, क्योंकि ये कम्युनिटी रेडियो है, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए, जैसे ईगो कहा गया है कि ईगो है पुरुषों में, तो महिलाओं में स्वाभिमान होना चाहिए। आपके पास स्वाभिमान है, आपके पास में ये दौलत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आप दुनिया के हर क्षेत्र में आगे आ सकते हैं। हमने ऐसी महिलाएं देखी हैं जिनको घर से बिल्कुल नहीं पढ़ाया गया, लेकिन वो भी बहुत अधिक डिग्री लेके नंबर वन बनी है। ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया है, उन्होंने जंगल में भी अपनी दुनिया बना ली है। ऐसी महिलाएं हैं हमारे देश में जो एवरेस्ट पे चढ़ती हैं,
हमारे देश में ऐसी महिलाएं हैं कल्पना जैसी जो अंतरिक्ष में जाती है। तो जब हमारे देश में ऐसी महिलाएं हैं तो उन्हीं को आप अपना एक बनाइए, उद्देश्य बनाइए, आदर्श बनाइए और फिर ये चलता रहेगा। माने ये लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है, अस्तित्व अपना बचाने के लिए हर भरसक क्वेश्चन जो कोशिश है वो महिला को करनी चाहिए, उसके बाद में हमारा अस्तित्व हमारे पास ही रहेगा। परंतु जब ऐसे इंसिडेंट आते हैं तो दिल बहुत भर आता है कि एक 6 पुरुष होके 8 पुरुष होके जब गैंग रेप करते उस समय महिला की क्या हालत होती है। तो हालांकि कानून ने उसमें बहुत कड़ी सजा रखी है, माने सबसे ज्यादा सजा गैंग रेप में है और कस्टोडियल रेप में है कि जिसकी कस्टडी में आप हैं, आप कहाँ हैं, आप बस में चढ़े तो आप उसकी कस्टडी में आ गए कि आप उनकी शरण में हैं, आप सेफ हैं, इस वजह से बस में चढ़े हैं कि मैं अब सुरक्षित हो गई, मैं बस में बैठ गई, मैं अब घर पहुंचूंगी। तो लेकिन ये तो डबल है कि कस्टोडियल रेप भी है, जैसे गैंग रेप भी है, ये ब्रूटल भी है, ये धोखा भी है कि आप धोखे से बस लेके तो खड़े हैं कि भाई ये जाएगी तुम्हें मंजिल पे पहुंचाएगी और वही बस में आप अत्याचार करते हैं, वही रेप करते हैं। तो मैं तो कहना चाहूंगी ये केस इतना बदिक हिला देने वाला है कि आज मुझे एज एन एडवोकेट, एज ए सिटीजन, एज ए वुमेन मुझे और कोई भी चीज समझ में नहीं आती है कि मैं क्या बोलूं और क्या कहूं। इतना अधिक इस केस ने झकझोरा है हम लोगों को, सभी महिलाओं को, देश क्या विदेश क्या, कहीं भी बैठी होगी कोई भी भारतीय नारी वो सोचेगी कि क्या है हमारी सुरक्षा, ये क्या है हमारी बात, हमारे अंदर ऐसी क्या बात है कि उसका एक पुरुष साथी भी साथ है, उसका एक दोस्त भी, जैसा कहा जाता है मुन्ना को ले ले, गुड्डू को ले ले, अरे उसने तो लेके रखा हुआ था साथ में कि मेरे साथ एक सुरक्षित रखने वाला व्यक्ति भी है, लेकिन उसे भी कितनी बुरी तरह से पीटा गया। ना लड़के सुरक्षित है ना लड़की सुरक्षित है, और वो भी आप समय भी देखिए कि कोई बहुत ज्यादा समय भी नहीं था, जो पहले की कई बार ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं कि रात को लड़कियां क्यों निकलती हैं इतने में, क्यों, ऐसा कोई समय भी नहीं था वो, और आज दिन में भी डर लगने लगा है महिलाओं को। तो अस्तित्व तो हमारा बहुत खतरे में, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास एक हौसला है उड़ान भरने का, उसके बाद भी हमारा स्वाभिमान है जो हमारे को बताता है कि नहीं, महिलाओं को कोई कुछ उनका नहीं बिगाड़ सकता। ये जो शक्तियां हैं, जो राक्षसी शक्तियां, ये कोशिशें कितनी भी कर लें, ये हर बार कोशिश करती हैं, लेकिन इन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा क्योंकि हम सब महिलाएं एक हैं।
मैडम रेडू भाटिया, यहाँ आपसे जानना चाहूंगी कि जिस प्रकार मैडम संध्या बजाज ने कहा, आपको नहीं लगता है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अगर ऐसी आए जो ज्यादा से ज्यादा विमेन को एक तो सेल्फ डिफेंस सिखाएं और साथ के साथ ऐसा अगर कोई केस होता है तो उसमें आगे बढ़कर उनका सपोर्ट करें, तो शायद मुझे लगता है ये चीजें कम हो सकती हैं।
देखिए यहाँ पर फिर इस सपोर्ट के बाद बहुत सी हमने एक्सपीरियंस ये किया है कि जब हम किसी को डिफेंस करते हैं
जी,
किसी लड़की को या किसी केस में कपल को इस तरह से बचाते हैं, तो ऊपर से हमारे ऊपर जो दबाव आते हैं ना, वो आते हैं पॉलिटिकल दबाव
जी, जी।
इसका मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ, फरीदाबाद का सेक्टर 17 में, आज से 3 साल पुरानी बात है ये। एक घर में एक 12-13 साल की लड़की बिहार साइड की
जी,
एक वो करती थी, काम करती थी
जी जी।
पहले तो चाइल्ड लेबर हो गया उसके ऊपर क्राइम, दूसरा दैट वाज अ डॉक्टर फैमिली एंड दैट डॉक्टर यूज्ड टू अब्यूज दैट गर्ल, यूज करते थे उसको एवरी डे। पता नहीं कैसे करके वो लड़की को बाहर भी नहीं निकलने दिया कई महीनों तक, कैसे वो लड़की बाहर निकली और उसने अपनी ना पड़ोस वाली काम करने वाली को बताया
जी।
आई वाज डूइंग ह्यूमन राइट्स की तरफ से मैं काम कर रही थी तब, तो मुझे मेरे तक ये बात आई और मैंने पूछा, आई डोंट वांट टू टेल दैट पर्सन्स नेम ऑफ फरीदाबाद, कि मुझे इतने बड़े व्यक्ति की अप्रोच आई यहाँ से कि उस डॉक्टर मेरा दोस्त है, ये है वो है मत
जी।
एंड देन आई सेड नहीं, ऐसा मैंने इतनी छोटी बच्ची को 4 साल से खराब होते देखा है, मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि मैं आपका नाम ना बताऊं बट गिव ऑल द बेनिफिट्स टू दैट गर्ल। मैंने उस लड़की को बिहार वापस भिजवाया, आई गेव दैट गर्ल उस व्यक्ति से लेकर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी कि उसकी शादी भी हो और वो जब तक 17-18 साल तक नहीं होती तब तक वो पढ़ पाए। तो यहाँ पर हमारे ऊपर ये वाले ब्रेकेजेस भी हैं, तो जब तक ये समाज और जब तक यहाँ का कानून सख्त नहीं होगा तब तक ये नहीं हो सकता। और सबसे पहली बात है आपकी सिविक सेंस इन मामलों में
जी,
आपकी हर मामले में सिविक सेंस चलती है, इन मामलों में नहीं चलती। आप मैक्सिमम आदमियों को देखें, आदमी के अपनी पत्नी के अलावा 3 मैरिटल अफेयर्स होंगे
जी,
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स 3 होंगे, लेकिन औरत का किसी का लड़की का पता लग जाए कि इस लड़की का कहीं चक्कर है या बाय चांस उस लड़की को पड़ोसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ देख ले, तो आप समझिए कि उस लड़की की पूरी फुल बदनामी शुरू और खुद भी उसकी लिफ्ट मारना शुरू
जी।
ही विल ऑल्सो ट्राई ऑल हिज सेंसेस, वो भूल जाता है कि मैं ऑलरेडी 3 के साथ एंगेज हूँ, 4th तो वो भूल जाता है। तो ये सारे चीज़ें जो है ना, ये ईगो भी है इसमें, एक्सप्लॉयटेशन भी है और ये सारा जो ना गैर कानून व्यवस्था भी है, तो इन सब चीजों को सुधार करने की बहुत जरूरत है, और सबसे पहले अपने अंदर। अदरवाइज तो हम में बहुत ताकत है, और एक ही बात कहूंगी, इतनी शक्ति हमें देना दाता की मन का विश्वास कमजोर।
बिल्कुल मैडम सभी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो हर फील्ड में औरतें कोशिश कर रही हैं, आगे बढ़े, मदद करें, लेकिन फिर भी शायद कितनी भी मदद की जाए फिर भी कम है, क्योंकि ये जो अस्तित्व की लड़ाई है ये निरंतर जारी रहने वाली चीज है, और जितना ज्यादा हम आगे आने की कोशिश करते हैं, हर रोज न्यूज़पेपर किसी एक ऐसी सनसनीखेज खबर के साथ होता है जिससे हम शायद 10 कदम वापस पीछे चले जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये कब तक हमें लड़ना पड़ेगा?
भावना, ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक समाज, जो कि अच्छे बुरे हर किस्म के लोगों से मिलकर बना है, उसकी सोच नहीं बदलेगी। वो महिला को जो उसकी रेस्पेक्ट है, जो उसका हक है, वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई चलती ही रहेगी। और महिलाओं को भी समझना पड़ेगा कि उनका स्वाभिमान किस तरह से वो बचा सकती हैं। वो किसी शायर ने खूब कहा है ना, तुम कितना दर्द देते और मैं कितना दर्द सहती, शायद इतने बुरे तो तुम भी नहीं और इतनी भली तो मैं भी नहीं। तो इतनी भली नहीं बनना है कि हम जो है, जो पे अगर जुल्म हो रहा है तो उसको अपने ऊपर होने दें। आपके पास ये वक्त आ गया है कि आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। जब तक ये हिम्मत आप अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, इस तरह की लड़ाई को जारी रखना होती रहेगी।
जी हाँ, घर घर में ऐसी परेशानियाँ हैं, और सबसे पहले ज़रूरत है तो अपने अस्तित्व के लिए आपको खुद आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। मैडम इकविंदर, आपसे जानना चाहूंगी कि आई थिंक इन सब चीजों के लिए सबसे पहले जरूरत है कि खुद एक लेडी, खुद एक लड़की इक्विप्ड हो विद लॉट्स ऑफ अवेयरनेस, तभी शायद वो अपने अस्तित्व की लड़ाई कर सकती है। क्या कहना चाहिए?
देखिए, लॉट्स ऑफ अवेयरनेस कैंपेन्स तो बहुत हैं। अगर हम आसपास के इदारे में देखते हैं तो सोसाइटी में देखते हैं बहुत तरह की अवेयरनेस कैंपेन्स जारी हैं, लेकिन अब टुवर्ड्स द एंड देखते हैं कि हमारा टारगेट कहाँ तक पहुँचा है, कि हम सक्सेसफुल उसमें हुए हैं कि नहीं, और किस हद तक सक्सेसफुल हुए हैं। इसलिए हमको एक जो सोशल कैंपेन्स आप बता रही हैं उसके साथ एक और चीज़ जोड़ने की ज़रूरत है, जो कि है एक लॉ इन्फोर्सिंग मशीनरी। इन दोनों को यदि हम क्लब कर दें सो दैट आजकल के बच्चों को अपनी ड्यूटीज और राइट्स इक्वली एक्सरसाइज करने का मौका दिया जाए। अब ये अवेयरनेस कैंपेन जो हमारी हैं, हम स्कूल के दायरे में हम अपनी वर्कशॉप्स कराते हैं, और उसके बाद एज अ पार्ट ऑफ आर ओन एनलाइटनमेंट प्रोग्राम्स हम अपने करते हैं, उसमें हमने ये देखा है कि कुछ ऐसी हमारी जो लेडी टीचर्स हैं खुद आगे आकर के कुछ बताती हैं, उसके बाद हम लोग उसका फीडबैक बच्चों से लेते हैं। जब फीडबैक बच्चों से हम लेते हैं तो ज़्यादातर जो हमें देखने को आया है, क्योंकि घर की कंडीशंस, घर का जो माइंडसेट इस तरह से बना दिया गया है कि जो लड़कियां, जो गर्ल्स आती हैं वो इतनी ओपन अपने ओपिनियंस में नहीं हो पाती हैं। बॉयज़ जो हैं दे हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस वेरी फ्रीली, वेरी कैटेगोरिकली, लेकिन जो गर्ल्स होती हैं उनको एक लिमिटेड दायरा दिया जाता है कि आप इससे फालतू नहीं बोलेंगी
जी,
आप इतना ही अपना ओपिनियन रखिए, उसके अलावा जो है अब हमें छोड़ दीजिए, बिकॉज वी आर योर केयर टेकर्स, बाद में आपका कोई और केयर टेकर होगा। तो इस तरह की जो हमें अवेयरनेस लाने की जरूरत है वो सेकेंडरी और प्राइमरी को छोड़ दीजिए, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, जब तक हमारे एक मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है। देखिए, जब तितली की बात आई है, जो एक कैटरपिलर आता है, मॉस अपने आगे पत्ते लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके बाद हम जब मेटामॉर्फोसिस के उतरते हैं तो एक पंख फैला करके तितली उड़ने को तैयार हो जाती है बाहर की दुनिया में। वो जो विंडो हम प्रोवाइड करते हैं एज एजुकेशनिस्ट, जो बच्चा बाहर जाता है, उड़ान भरता है, बच्चे बॉय और गर्ल जब मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस से बाहर निकलते हैं तो वो जो हमको विंडो प्रोवाइड करनी है वो एक दुनिया की विंडो प्रोवाइड करनी है, और एक इक्वल तरह के प्लेटफॉर्म की विंडो प्रोवाइड करनी है कि यदि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ अलॉन्ग विद योर ड्यूटीज़ गो हैंड इन हैंड।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी मैं मैडम संध्या बजाज का, मैडम रेनू भाटिया का, मैडम इकविंदर सिंह का, और साथ के साथ सभी इमरान जी का कि वो रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में आए और आज इतनी बेहतरीन जानकारी दी हमारे सभी लिसनर्स को।
थैंक यू,
धन्यवाद।
दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट, मैं तो आपसे इजाजत ले रही हूँ, लेकिन आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ।